ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। उन्नीसवां G20 शिखर सम्मेलन आज ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में आयोजित किया जा रहा है। सदस्य देशों के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि विभिन्न सत्रों में इस वर्ष की घोषणा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आइए चलते हैं रियो डी जेनेरियो में मौजूद हमारी संवाददाता साक्षी के पास। साक्षी, शिखर सम्मेलन को लेकर इस समय आपके पास क्या ताजा जानकारी है?
नमस्ते नवीन। यहाँ पे ये जो हमारा सम्मेलन है 19वां G20 सम्मेलन, ये आरंभ हो चुका है। एक एक करके हमारे जो 40 से अधिक जो सदस्य राज्य हैं, देश हैं, उनके लीडर्स आ रहे हैं। कुछ प्रमुख जो हमारे लीडर्स आ चुके, एक तो ट्रॉयका के जो इस ट्रॉयका प्रणाली में एक सदस्य साउथ अफ्रीका के पीएम रामपोसा जी आ चुके हैं। अभी भी प्रधानमंत्री मोदी अभी नहीं आए हैं, तो उसका देखा जाएगा। बाकी अगले दो दिन बहुत से ऐसे वैश्विक विषय हैं जिन पे चर्चा होगी। सबसे पहले तो जो हमारा स्टार्टिंग या इनॉग्रल सेशन होगा, वो ये वैश्विक गठबंधन जो बन रहा है गरीबी और भुखमरी के अगेंस्ट, उसके लिए होगा, उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। और ये इस जो ग्लोबल अलायंस या वैश्विक गठबंधन है, ये बाकी सदस्य और बाकी राज्य देशों के लिए भी खुल जाएगा। और उसके अलावा बाकी इश्यू जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, और हमारे बहुत से अलग अलग सतत विकास को लेकर है, क्लाइमेट चेंज हो गया, कृषि हो गया, ऐसे बहुत से अलग वैश्विक मुद्दे हैं जिसपे ये सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा करेंगे और डिक्लेरेशन पे अपनी सहमति बनाएंगे।
जी
नवीन, आपके लिए
धन्यवाद साक्षी जानकारी के लिए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति प्रस्तुत करेंगे और G20 की पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के परिणामों के साथ साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का विषय है एक न्यायसंगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी का विश्व के नेताओं के साथ कई बैठकें करने की भी उम्मीद है। नाइजीरिया की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंच गए हैं। उनका प्रवासी भारतीयों ने बहुत ही उत्साह और गर्मजोशी से स्वागत किया। इस बीच ब्राजील में भारतीय राजदूत सुरेश के रेड्डी ने कहा कि भारत प्रमुख नेता के रूप में ग्लोबल साउथ देशों के हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान आकाशवाणी को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में श्री रेड्डी ने ये बात कही। भारत G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 7% वृद्धि दर के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में सबसे तेज गति से बढ़ने की आशा है। भारत के बाद 5% की वृद्धि दर के साथ इंडोनेशिया दूसरे और 4.8% के साथ चीन तीसरे स्थान पर है। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में रैंकिंग जारी होने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में भारत सरकार के बयान के अनुसार ये उपलब्धि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को उजागर करती है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच अपनी मजबूती और तेज गति से विकास को प्रदर्शित करती है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो गया। झारखंड में दूसरे चरण के 38 सीटों और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि 20 नवंबर को शाम 5 बजे तक संबंधित पीठासीन अधिकारियों को अपने मतगणना एजेंट का विवरण उपलब्ध करा दिया जाए। श्री कुमार ने मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभयारण्य को देश का 56वां बाघ अभयारण्य को अधिसूचित किया है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। आज दोपहर 1 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 490 के साथ गंभीर से अधिक के स्तर को पार कर गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में 500 AQI स्तर दर्ज किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।